ओम शांति। तो जैसे बताया था आपको कि राजयोग मेडिटेशन के तीन कदम है। पहला कदम आत्मा को जानना, दूसरा कदम परमात्मा को जानना और तीसरा कदम आत्मा और परमात्मा के बीच कनेक्शन, कि जिस कनेक्शन से आत्मा की बैटरी चार्ज हो और उसके सारे ऐप काम करना शुरू कर दे। तो आत्मा का परिचय कल मिल चुका है आपको, आज हम परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। और ये परिचय प्राप्त करने से पहले हम सब ने उस परमात्मा के प्रति बहुत सुंदर गीत सुना, कि जिस गीत की पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक खुदा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, रहते कहाँ हो, करते क्या हो। हाँ, पूरा गीत प्रश्नों से भरा था। और आप सभी भगवान को तो सभी याद करते हैं, करते हैं सभी, जो करते हैं हाथ खड़ा करें, सभी करते हैं। अब भगवान को हम सभी याद करते हैं और ये जो गीत बजा था जिसमें एक के बाद एक प्रश्न पूछे गए, तो ये जो प्रश्न पूछे गए, जिसने ये गीत लिखा है, ये सिर्फ उसके प्रश्न है या जिसने ये गीत गाया है, स्वर दिया है, उसके प्रश्न है, या आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं? क्या कहेंगे, होते हैं आपके मन में भी ऐसे प्रश्न? कौन कौन कहता है हमारे मन में भी ऐसे प्रश्न होते हैं? धीरे धीरे सबकी आदत उठ रहे हैं। अब सोचने की बात है कि हम भगवान को याद करते हैं, अर्थात भगवान की एक छवि हमने अपने हृदय में बिठाई हुई है, तो हम जानते हैं वो कौन है, जानते हैं ना कौन है वो, तभी तो याद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये प्रश्न है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं भीतर में ये बात जरूर है कि ये जो मैंने भगवान की छवि हृदय में बिठाई है, ये मेरी आस्था वाली छवि है, मेरी श्रद्धा वाली छवि है, मेरे विश्वास वाली छवि है। और मैं जो जानती हूँ वो बहुत कुछ लिमिटेड जानती हूँ, सत्य तो खुदा ही आके बताएगा। और इसलिए वो खुदा को दिल में स्थान भी दिया है और उसके बाद भी कहते, खुदा तू बता कौन है। समझ में आ रही है ना बात? तो आज इन्हीं प्रश्नों का हम समाधान प्राप्त करेंगे और इसी से उनका परिचय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परिचय में पांच बातें आती है। नाम क्या है, रूप क्या है, एड्रेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और यही सारी बातें उस गीत में पूछी गई। यही पूछा गया उसको कि तेरा नाम क्या है, करता क्या है, मना ऑक्यूपेशन क्या है, धाम क्या है, मना एड्रेस पूछा गया। फिर पूछा, तू पर्दानशीन क्यों रहता है, तेरे पर्दानशीन के कारण ही इंसान तुझे ढूंढ रहा है। तो जो परिचय की पांच बातें होती है वो सारी बातें इस गीत में पूछ डाली और आज हम उसको समझेंगे। और क्यों परमात्मा का परिचय आत्मा को जानने के बाद दिया जाता है? क्योंकि कहते हैं खुद को जान लेंगे तो खुदा को जान लेना आसान हो जाता है। क्यों ऐसा कहा गया है? सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, ऐसा कहते हैं ना। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जैसे हिंदी में सेल्फ के लिए आत्मा शब्द है और ऐसे परमात्मा के लिए कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? सुप्रीम सोल। हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में कहेंगे सोल और परमात्मा के लिए कहेंगे सुप्रीम सोल, और फिर वही चीज हिंदी में क्या हो जाएगी? आत्मा परमात्मा। अब परमात्मा जो शब्द है ये दो शब्दों की संधि करके बनाया गया है। इसका अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो जो दो शब्द मिलेंगे वो कौन से होंगे? एक होगा परम और दूसरा होगा आत्मा। दोनों की संधि कर दी, मिला दिया तो आ गया परमात्मा। और इसलिए परमात्मा का परिचय आत्मा के बाद सरल इसीलिए हो जाता है क्योंकि परम आत्मा से पता चलता है कि परमात्मा भी एक आत्मा है। तो आत्मा का तो परिचय ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो कैसी आत्मा है? परम आत्मा। और इसलिए परमात्मा का परिचय हम शुरू करें तो कैसे करेंगे? पहले परम शब्द को समझेंगे और फिर आत्मा, इससे हम परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेंगे बहुत आसानी से। तो मैं आपसे पूछूंगी कि परम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है परम का अर्थ? हाँ जी, सर्वोच्च। और कुछ? सर्वोच्च राइट है, सर्वशक्तिवान। और हाँ, अनंत, सुप्रीम, सही आंसर है। लेकिन अब हमें इसका खुलासा करना होगा। बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। हम इसका खुलासा करेंगे क्योंकि अगर खुलासा नहीं करते हैं तो वो सिर्फ बात शब्दों तक रह जाती है, और इसलिए हम परमात्मा को समझ नहीं पाते कि वो है कौन। तो जैसे शब्द आया सुप्रीम, शब्द आया सर्वोच्च, तो सुप्रीम का सर्वोच्च का खुलासा करेंगे हम कि उसका मतलब क्या होता है। समझो मेरे जीवन में कोई घटना घट गई और केस बन गया और केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, मैंने कहा मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए, और मैं हाई कोर्ट में गई, वहां पर भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, लेकिन वहां पर भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया। अब है कोई और कोर्ट इस दुनिया की कि जिसमें मैं जा सकती हूं अभी? है कोई? कोई नहीं है। तो समझ में आया सुप्रीम माना क्या होता है, सर्वोच्च माना क्या होता है? कि उससे आगे, उससे ऊंचा कोई नहीं होगा, उसके नीचे होंगे परंतु उससे ऊंचा अब और कोई नहीं होगा। ये है सर्वोच्च की मीनिंग। अब हम परमात्मा का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं कि परमात्मा क्या है? परम आत्मा है, अर्थात एक ऐसी आत्मा जो सर्वोच्च है। ये हुआ। तब यहां अर्थ क्या हो गया कि परमात्मा सर्वोच्च है? क्या अर्थ हो जाएगा? देखो, मेरे माँ बाप अनपढ़ गवार थे, गरीब थे, लेकिन मेरे को जन्म देने के बाद उनको लगा कि भले हमने अभावों की जिंदगी जी, भले हम अनपढ़ रहे, पर हम बच्ची को अनपढ़ नहीं रखेंगे। पेट को पट्टी बांधकर भी, रात दिन मेहनत करके भी उन्होंने कहीं से धन का जुगाड़ लगा लगा के बच्ची को पढ़ाया। बच्ची आज आईएएस ऑफिसर बन गई। अब वो माँ बाप जो आज भी अनपढ़ है और ये बच्ची जो आईएएस अफसर बन गई, इन दोनों में ऊंचा कौन? अनपढ़ है वो और ये आईएएस ऑफिसर हो गई है, फिर भी ऊंचा कौन? माँ बाप। ये बच्ची आईएएस ऑफिसर बनने से पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी, प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया था, तो जिस प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया था वो आज भी उसी स्कूल में और वही प्राइमरी टीचर की हैसियत से पढ़ाता है, और ये बच्ची तो उससे पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन गई। अब इस टीचर में और इस बच्ची में बड़ा कौन? बड़ा कौन? वो प्राइमरी टीचर। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि हर वो आत्मा जो मां के गर्भ में जाकर देह धारण करके रंगमंच पे आएगी, देहधारी बनेगी, वो कभी भी सर्वोच्च बन ही नहीं सकती। सबसे वो ऊंची बन सकती है पर माँ बाप से कभी नहीं बनेगी वो ऊंची, अपने टीचर से कभी नहीं बन सकते ऊंचे, अपने गुरु से कभी नहीं बन सकते ऊंचे, अपने रक्षक से कभी नहीं बन सकते ऊंचे। दुनिया में कितने ही लोग होंगे उनसे बन जाएंगे ऊंचे, पर इनसे ऊंचे किसी भी हालत में एक आत्मा नहीं बन सकती है, और इसलिए कोई भी देह धारण करने वाली आत्मा को सर्वोच्च आत्मा नहीं कह सकते। क्लियर? और इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा एक ऐसी आत्मा है जो कभी देह धारण नहीं करती है, और इसलिए उसको कहा गया तू अजन्मा है। कहते हैं ना ऐसे, क्या कहते हैं भगवान के लिए? तू अजन्मा है। अच्छा, ये पहली बात हो गई कि वो सर्वोच्च है और उसका अर्थ क्लियर हुआ। दूसरी बात, मनुष्य आत्माएं देह धारण करती है तो देह के बंधन में आती है। कैसे? क्या करूं, मेरे घुटने साथ नहीं देते हैं, बंधन है ना देह का। या फिर नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी सोने का टाइम है, बंधन है ना कि इसको रेस्ट देना है, नहीं तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। तो देह का बंधन है, देह के संबंधियों का बंधन है। कैसे पता चलता है? कई कई बार हम कह बैठते हैं, हे भगवान मेरे नसीब में ही ऐसी पत्नी, दुनिया में देखो कितनी अच्छी पत्नी, पति खुश होते हैं, पर मेरा नसीब खोटा, ऐसी पत्नी मेरे नसीब में आई। कई कई बार पत्नियां कहेंगी, हे भगवान मेरे ही नसीब में ऐसा पति। कोई कहेंगे, हे भगवान मेरे ही नसीब में ऐसे बच्चे जो एक बात नहीं मानते हैं। बंधन महसूस कर रहे हैं ना, बंधन महसूस कर रहे हैं ना कि किस पत्नी से पाला पड़ गया, किन बच्चों से पाला पड़ गया। तो देह के संबंधियों का भी बंधन है। फिर चूंकि देह ली है तो कर्म करते, कर्म का भी बंधन है। अरे भाई परिवार किया है तो कमाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे कमाई बच्चों को पालेंगे, है ना, कर्म करना पड़ेगा ना कमाने का, तो कर्म का बंधन है। और फिर जैसा करेंगे कर्म वैसा आएगा कर्म फल, और कर्म फल किस रूप में आएगा? निंदा स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि, यही होता है हमारे जीवन में। कभी यश है तो कभी अपयश और भोगना ही पड़ेगा ना, तो बंधन में है ना, क्या करें? किए हैं कर्म तो भोगने तो पड़ेंगे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बंधन महसूस कर रहे हैं ना। तो कोई भी आत्मा जो देह धारण करेगी उसको देह का बंधन होगा, देहधारियों का बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा, कर्म फल का बंधन होगा, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहेगी आत्मा। लेकिन परमात्मा जो अजन्मा है, जो देह नहीं धारण करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, देह के बंधन से परे है, देह के संबंधियों के बंधन से परे है, कर्म के बंधन से परे है, कर्म फल के बंधन से परे है। और इसलिए जब हम अपने आप को इन बंधनों में बंधा हुआ महसूस करते, एक लाचारी अवस्था की फीलिंग में आ जाते हैं कि क्या मेरी जीवन है, बंधनों से जकड़ा हुआ हूं, और तब उस भगवान को पुकारते हैं, ओ मुक्ति दाता, हमें भी इन बंधनों से क्या कर दो, मुक्त कर दो। क्यों कहते हैं उसको मुक्ति दाता? क्योंकि वो इन सारे बंधनों से क्या है, मुक्त है। जो मुक्त होगा वही दूसरे को मुक्त करा सकता है। आपके हाथों में भी जंजीर बंधी, मेरे हाथ भी दोनों जंजीर से बंधे, हम खोल सकते हैं एक दूसरे के बंधन? नहीं खोल सकते। अगर आप जंजीर से मुक्त हो, आपके हाथ फ्री है, तब कहीं जाकर आप मेरी जंजीर को खोल सकते हो। तो हम परमात्मा को क्या कहते हैं, ओ मुक्ति दाता। क्यों? क्योंकि हर प्रकार के बंधन से वो मुक्त है, तभी वो हमें मुक्त कर सकता है। और इसीलिए हमने सिर्फ मुक्ति दाता नहीं कहा उसको, हमने कहा तू अजन्मा है, तू अकर्ता है, तू अभोक्ता है। कहते हैं ना उसकी महिमा में ऐसा। तो जो सर्व बंधनों से मुक्त हो, सर्व बंधनों से परे हो, उसके लिए शब्द आता है सर्वश्रेष्ठ, उसके लिए शब्द आता है सर्वोपरि। तो दूसरी बात कि परमात्मा माना एक ऐसी आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सर्वोपरि आत्मा है। ठीक है, परम शब्द से सब निकाल रहे हैं हम। नंबर थ्री, अब जो पहली बात कही कि वो सर्वोच्च है, कि वो देह धारण नहीं करेगा, अर्थात उसका कोई माता पिता नहीं होगा, लेकिन वो स्वयं सर्व का माता पिता बनकर सर्व आत्माओं की पालना करता है। उसका कोई अपना टीचर नहीं होगा, लेकिन वो स्वयं सर्व का टीचर बनकर सर्व आत्माओं को सिखाता है। वो उसका खुद का कोई गुरु नहीं होगा, लेकिन वो स्वयं सर्व का सदगुरु बनकर सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। उसका खुद का कोई रक्षक नहीं, लेकिन वो सर्व आत्माओं का रक्षक बनकर जीवन नैया की रक्षा करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम रक्षक, ये शब्द उसके लिए गाए जाते हैं। अब वो सबका माता पिता है, तो जो सबका माता पिता हो, सबकी पालना करनी है, उसके पास पालना के लिए जो बातें आवश्यक होती है उसका स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप या माँ बाप बैठे हैं, बच्चों को पालने के लिए कुछ नीड्स होती है नहीं होती है? आप कैसे क्या करते हो बच्चों को पालते हो तो? या समझो आपका बच्चा हेल्दी है लेकिन किसी कारण से 2-3 दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, हेल्थ में अनहेल्दी बना है। आपको कुछ घरेलू नुस्खे पता थे, आपने उसका उपयोग किया पर देखा कि फायदा नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? डॉक्टर के पास। किस लक्ष्य से? कि मेरे अनहेल्दी बच्चे को डॉक्टर क्या कर दे? हेल्दी कर दे। तो आपके अनहेल्दी बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। और देखो, 3 चीजें करता है वो। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने बताना है आपकी प्रॉब्लम, वो आपको सुनेगा और आपकी प्रॉब्लम सुनकर वो उस प्रॉब्लम की जड़ निकालने के लिए थोड़े और भी क्वेश्चन कर सकता है कई बार, क्योंकि फाइंड आउट करना चाहता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ किधर है, क्योंकि अगर जड़ का पता लग जाएगा तो ट्रीटमेंट सही हो सकता है, वरना अंदाजी टोला में ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो थोड़े से और प्रश्न कर लेता है आपसे और फाइंड आउट कर लेता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है और उस आधार से अपना प्रिस्क्रिप्शन की जो बुकलेट उसके पास पड़ी है उसको उठाएगा, पेन उठाएगा और प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा और लिखकर बोलेगा, चूंकि आपकी ये प्रॉब्लम है और इस दवाई से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली है, आपको ये लेना होगा और साथ में ये परहेज करनी होगी। तो ये प्रिस्क्रिप्शन लिखना और बोलना कि ये डूस एंड डोंट्स फॉलो करो, ये सब क्या है? आपको ज्ञान दिया उसने, अभी सिर्फ क्या किया है आप, उसने आपको समझ दी, ज्ञान दिया, इस आधार से खरीदना तो जाके आपको ये दवाई। आपने बच्चे को देना है कि अभी बेटा ये दवाई लो और ये परहेज करो, तो डॉक्टर सिर्फ क्या करेगा, आपको ज्ञान देगा, समझ देगा और जरूरत पड़ेगी तो उसके पास डोज होगा तो वो उस समय खिला भी देगा। आप होम्योपैथी वाले के पास चले जाओ, उसी समय पुड़िया बना के आपके मुंह में डाल देता है और फिर बाद के लिए भी पुड़िया देता है, ठीक है? तो एक तो ज्ञान देगा और थोड़ा दवाई का डोज देगा और ये सब जो वो कर रहा होता है आपको समझ प्रदान करता है, लिख के देता है, ये सब कैसे करता है? डांट के करता है या प्यार से करता है? प्यार से करता है। और कई बार कुछ डॉक्टर प्यार से नहीं करते हैं, डांट के करते हैं, और अगर ये बात कई सारे पेशेंट ने नोट कर ली तो सब मिलाकर आवाज उठाते, इसको तो डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर माना उसके डॉक्टरी कोर्स के अंदर उन्हें सिखाया जाता है कि आपको किसको डील करना है, पेशेंट को। बेचारा पेशेंट पहले ही प्रॉब्लम में है और इसलिए आपको क्या करना है, उसको पेशेंस के साथ बहुत प्यार के साथ डील करना है। आप जब पेशेंट को पेशेंस से प्यार से डील करेंगे, आधी बीमारी तो उसकी वहीं खत्म हो जाती है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है ना। तो ये उन्हें सिखाया जाता है और अगर नहीं करते हैं तो लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, इनको तो डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, डॉक्टर के तो लक्षण दिख नहीं रहे। मतलब एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को क्या करना होता है, समझ देनी होती है, प्यार से देनी होती है, और क्या करना होता है उसको, क्या करता है वो, हिम्मत देता है, ढाढ़स बंधाता है, कहता है घबराना नहीं, ये मैंने लिख दिया है ना तुमको दवाई, इसके अनुसार आप करोगे सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। और अगर ये दवाई लेते कुछ हो भी ऐसा, आपको लगे कि ठीक नहीं हो रहे हैं, मैं बैठा हूं ना, आप आ जाना या कांटेक्ट करना, जरूरत पड़ेगी तो मैं दवाई बदल के दूंगा या और भी दूंगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन चीजें करता है डॉक्टर, समझ प्रदान करता है, प्यार अर्थात गुण है वो, गुण देता है और शक्ति देता है। इन तीन के आधार से वो अनहेल्दी को हेल्दी बनाता है, करता है। अब परमात्मा को किसको हेल्दी बनाना है, अनहेल्दी आत्मा को। हम आत्माएं अनहेल्दी हो गई है, स्वीकार है ये बात, स्वीकार है। क्या निशानी है कि आत्मा अनहेल्दी है, क्या निशानी आत्मा अनहेल्दी हो गई है, हाँ? सारी निगेटिविटी किसकी निशानी है, अनहेल्दी की निशानी है। हम पुकार रहे हैं तू शांति का सागर है, एक खड़ी शांति का अनुभव, शांति खत्म हो गई है ना। अनहेल्दी के दो ही बातें होती है, जब कोई अनहेल्दी होता है दो बातें होती है, एक जो चीजें शरीर में नहीं होनी चाहिए वो आ गई है, ट्यूमर होना चाहिए पर आ गया है, एसिडिटी होनी चाहिए पर आ गई है, तो जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो आ गई है तो उसको कहते अनहेल्दी, और जो चीजें होनी चाहिए उसका लेवल कम हो गया तो भी कहते हैं अनहेल्दी। कहते हैं ना कि बहुत कमजोर पड़ गए हो, बीमारी कोई नहीं है पर कमजोरी बहुत है, उसका लेवल जो चाहिए थी स्ट्रेंथ वो कम है। तो दो ही चीजें होती है बीमार होने में, कि जो चाहिए वो कम है और जो नहीं चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। अब यही तो हमारी आत्मा के साथ हो रहा है, चाहिए शांति पर कितनी शांति है, जो एक खड़ी शांति के लिए तड़प रहे हैं, इतनी भी शांति नहीं रहेगी मेरे पास। भगवान प्रेम का सागर है, उसके बच्चे हैं, पर एक बूंद प्यार के लिए तरस गए हैं, इतना भी प्यार मेरे पास नहीं रह गया है। और दूसरा जो नहीं चाहिए वो कितना है, बहुत अशांति है, बहुत अंदर में चिंता है, कब इससे मुक्त होऊंगा मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए था पर है, जो नहीं होना चाहिए था वो है, जो होना चाहिए था वो उसकी डिमांड है। क्लियर है, हम अनहेल्दी है, आत्मा अनहेल्दी है, क्लियर हो गया। अब तो परमात्मा ने भी इस अनहेल्दी आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए यही तीन स्टेप करने पड़ेंगे जो डॉक्टर ने किए। उसे ज्ञान देना पड़ेगा, समझ देनी पड़ेगी, और इसीलिए कहा जाता है परमात्मा को कि परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्माएं अल्पज्ञ है, और सर्वज्ञ है का मतलब उसको तीनों कालों का ज्ञान है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अर्थात इस रंगमंच पे जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा की बिगनिंग क्या है, ड्रामा का मिडिल क्या है, ड्रामा की एंड क्या है, उसको सब कुछ प्रेजेंट की तरह क्लियर है। हम आत्माओं को रहता है क्लियर, हमें तो कई बार प्रेजेंट भी क्लियर नहीं होता है। इसलिए आत्माओं को कहा गया अल्पज्ञ और परमात्मा को कहा गया सर्वज्ञ, कि तीनों कालों का ज्ञान है। और सिर्फ तीनों कालों का नहीं, जो ड्रामा इधर चल रहा है उसके तीनों एस्पेक्ट पता है, माना नीचे के तीन एस्पेक्ट पता है लेकिन ऊपर के भी एस्पेक्ट, वर्टिकली भी तीनों एस्पेक्ट अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान है। तीन लोग देखे होंगे ना कल आत्मा के परिचय में, तीनों लोकों का भी उसे ज्ञान है। और हमें तो बच्चा पूछता है मम्मी भगवान का घर किधर है, ऊपर, मम्मी कहाँ है, दिख रहा है बेटा है, चुप रहे, मान लेना चाहिए, नहीं है ना क्लियर हमें। लेकिन उसको तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है। और न सिर्फ उसको तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, लेकिन खुद त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है, तो हमको भी वो ज्ञान देकर हमें भी त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बना देता है। कैसे, ज्ञान देकर अर्थात तीसरा नेत्र, कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, तो हमें त्रिनेत्री बना देता है, सर्वज्ञ। इतना ही नहीं, उसके लिए और एक टाइटल यूज होता है, ज्ञान का सूर्य है वो। क्यों कहा ज्ञान का सूर्य, कि जैसे वो सूर्य आसमान में आता है और अपनी उपस्थिति मात्र से रात के घटाटोप अंधकार को यूं पल भर में खत्म कर देता है, उसकी उपस्थिति हुई और अंधकार यूं भागा। ऐसे ही कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा हुआ अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है और हमारे जीवन में उस ज्ञान सूर्य की रोशनी आती है, हमारा अज्ञान का अंधकार भाग जाता है। जैसे ही आपको आत्मा के बारे में परिचय कल मिला, भाग गया ना आपका अज्ञान, कि जो हम इसको समझते थे ये मैं हूं, ये अज्ञान अभी भाग गया ना आपका, अब कहें कि ये मैं हूं, नहीं ये क्या है, ये मेरा शरीर है और मैं कौन हूं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो भ्रुकुटी में निवास करती है। रियलाइजेशन हुई सबको, ये स्वीकार हुआ सबको, ये किस आधार से स्वीकार हुआ, कि स्मृतियां अंदर में थी लेकिन हम उसको भूले हुए थे, तो स्मृतियां सोई पड़ी थी। जैसे उस दिन बता रहे थे ना, स्विच होता है, व्यवस्था सारी है, लाल लाइट की, सफेद लाइट की, पंखे की, इसकी उसकी, लेकिन बटन तो आपको दबाना पड़ेगा ना। तो हमने काफी दिनों से हम भूल गए कि हमारे पास स्विच है, सब कुछ भूल गए और हम बाहर ढूंढने लगे सुख को और शांति को। लेकिन परमात्मा आके अवेयरनेस देता है, ज्ञान देता है, हमारी सोई हुई स्मृतियां जाग जाती हैं, हमें रियलाइजेशन होती है। तो ज्ञान का सूर्य, तो ज्ञान का सूर्य है, उसकी सूर्य के साथ क्यों कंपैरिजन की, चंद्रमा से भी तो कर सकते थे, क्यों सूर्य से की, क्योंकि सूर्य से कल कंपैरिजन करने के पीछे भाव है कि जैसे सूर्य सदा प्रकाशित रहता है, उसका प्रकाश कभी धुंधलाता नहीं है, जबकि चंद्रमा आज पूनम है कल अमावस हो जाएगा, तो लिमिटेड है, बदलता रहता है। और सूर्य अनलिमिटेड है, बदलता नहीं है, और इसलिए कहा ज्ञान का सूर्य है वो। और सूर्य क्या करता है, दाता बनके देता है, किसको देता है, हिंदू को दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा, गरीब को दूंगा, अमीर को नहीं दूंगा, ऐसा है? सर्व को देता है, वो सर्व का और सदा का दाता है, सदा देता है ना वो। तो परमात्मा ज्ञान का सूर्य है जो सदा देता है। तीसरी पॉइंट हो गई कि वो सर्वज्ञ है, ज्ञान का सूर्य है। चौथी पॉइंट, डॉक्टर के केस में क्या कहते, तीन बात, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो परमात्मा एक ऐसी आत्मा है जो सर्व गुणों का सागर है। सागर से क्यों भेंट की, नदी से क्यों नहीं भेंट की? नदी आज उफान पर है, कल सूख जाएगी। नदी लिमिटेड है, लेकिन सागर सदा भरा रहेगा, अनलिमिटेड है। ऐसे परमात्मा के पास जो गुणों की संपत्ति है वो अथाह है, अनंत है, असीम है, अनलिमिटेड है। इसलिए कहा सर्व गुणों का सागर। वो एक दो गुणों का सागर नहीं है, सर्व गुणों का सागर है वो। और सागर भी दाता होता है, तो दाता है, सर्व गुण देता रहता है। और फिर पांचवी बात, अर्थात डॉक्टर के केस में थर्ड बात, शक्तियां। क्या कहते हैं परमात्मा की महिमा में, तू सर्व शक्तिवान है। सिर्फ शक्तिवान नहीं कहते, क्या कहते हैं, सर्व शक्तिवान। सिर्फ अथॉरिटी नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी। हर प्रकार की अथॉरिटी, और हर प्रकार की अथॉरिटी से क्या तात्पर्य है, सर्व प्रकार की शक्तियों से क्या तात्पर्य है, कि दुनिया में लोगों के पास जो जो शक्ति होगी, जो जो अथॉरिटी होगी, उनसे भी हटकर उसके पास वो अथॉरिटी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान। दुनिया में आज साइंस ने बहुत कुछ तरक्की कर ली, सफाई के भी बहुत अच्छे साधन दे दिए, जो आपको नहीं चाहिए उस निकालने के भी अच्छे अच्छे ऑपरेशन हो जाते। ट्यूमर नहीं चाहिए था, प्रॉब्लम कर रहा है, निकाल देता है ना साइंस, मेडिकल साइंस ट्यूमर को। लेकिन इधर निगेटिविटी चल रही है, इधर वेस्ट चल रहा है। निकाला कोई साइंस ने साधन, निकाला कोई साधन कि ऐसे बीम अंदर डाले और निगेटिविटी को खींच ले, है नहीं है। तब का परमात्मा के पास वो शक्ति है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। और इसीलिए परमात्मा को हम गाते हैं, तू पतित पावन है, ओ भगवान, ओ पतित पावन, आओ हम पतितों को पावन बनाओ। और पतित बना शुद्ध, पावन बना शुद्ध, अशुद्ध हो गए है ना, निगेटिविटी मेरी चीज नहीं है, वेस्ट मेरी खुद की चीज नहीं है, लेकिन आ गई है, इतनी आ गई हूं कि मैं परेशान हूं, निकालने की कोशिश में हूं पर निकलती नहीं है। लेकिन परमात्मा की वो बीम जब पड़ती है, लेजर बीम आत्मा पर, ये कचरा निकलता है। तब का वो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी अथॉरिटी है। तो एक परम शब्द को लेकर हमने परमात्मा की क्वालिफिकेशंस निकाली, निकाली ना पांच क्वालिफिकेशंस, कि परमात्मा क्या, कौन सी आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो सर्वोच्च है, परमात्मा एक ऐसी आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। परमात्मा एक ऐसी आत्मा जो सर्वज्ञ है, परमात्मा एक ऐसी आत्मा जो सर्व गुणों के सागर है, परमात्मा एक ऐसी आत्मा जो सर्व शक्तिवान है। और भी कई पर उसकी क्वालिफिकेशंस जो ये चित्र दिखाया है कि अनेकानेक उसकी क्वालिफिकेशंस, जिसका वर्णन करे तो कितना करे। तो ये पांच क्वालिफिकेशंस परमात्मा की। अवश्य लगता है कि ऐसी जिसकी क्वालिफिकेशन है उसका रूप क्या होगा, उसका रंग क्या होगा। तो आप सभी ने महाभारत सीरियल देखा होगा, कोरोना पीरियड में तो उसको रीटेलीकास्ट किया गया था और खाली बैठे थे लोग तो देखते ही थे। देखा है सभी ने, हर एपिसोड की शुरुआत कौन से श्लोक से होती थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक लंबा सा श्लोक, मीनिंग बहुत सिंपल, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है धर्म की ग्लानि होती है, वो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर अधर्म का विनाश करते हैं और सत धर्म की स्थापना करते हैं। अब जरा एक नजर इस धरती पर, इस सृष्टि पर डालो और बताओ, लगता है अधर्म बढ़ गया है, लगता है धर्म की ग्लानि हुई है, लगता है सभी को, हाथ उठाओ अगर सबको लगता है तो। तो इस श्लोक के अनुसार जो उसका वायदा है, ऐसे समय पर मैं अवतरित होता हूं, होना चाहिए उसको अवतरित यहां पे या नहीं, होना चाहिए या नहीं। और आज आपको खुशखबरी दे, यही खुशखबरी सुनाने के लिए ब्रह्मा कुमारियां इस प्रकार के प्रोग्राम्स का आयोजन करती है कि जिस परमात्मा को वैरायटी रीति से याद कर करके उसके दर्शन करना चाहते हो, उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, वो परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुका है अपने इस कर्तव्य के लिए। कौन सा कर्तव्य? अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना। कब अवतरित हुआ है? विद्यालय को आज 86-87 ईयर्स हो रहे हैं और ये विद्यालय की स्थापना तब से ही हुई है जब से परमात्मा धरा पर आए हैं। और वही जो आपको कहा गया क्लास के आरंभ में, अभी फिर भी लेट हुए हो, टू लेट नहीं, अभी भी कुछ वर्ष, भले ही 86-87 ईयर्स हुए हैं, लेकिन अब भी अपना कार्य भगवान कर रहे हैं। मार्जिन है भगवान के दर्शन करने के, उसके कृपा पात्र बनने के, और कृपा पात्र तो बन चुके, उनके घर आंगन में आप पहुंच गए हैं, ये तो बहुत बड़ी कृपा आप पर हो चुकी है। तो अवश्य जब धरती पर आया है तो वो भी आकर खुद अपना परिचय देता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे परिचय हैं और इन बहुत सारे परिचयों के कारण ही हम उसको बोलते, आखिर तू है कौन, बता तो सही। एक कहता है वो ऐसा है, दूसरा कहता है वो ऐसा है, आखिर तू है कौन, तू ही बता। और वही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। दुनिया के अंदर भी जैसे आप माता पिता बैठे हैं, आपके बच्चे आपकी रचना है, आप उनके रचयिता हो, तो बच्चों को उनके बारे में परिचय आप ही तो देते हो कि बेटा तेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, तो जब पैदा हुआ था तो इतने पाउंड का था, उस समय तेरा कलर इतना गोरा था, तू लाल लाल दिखता था, हेल्दी था, जो कुछ भी है आप ही तो बताते हो, उसको थोड़ी पता होता है। और अपना भी परिचय आप ही बताते हो कि मैं आपका पिता हूं, मैं ये हूं, आप ही तो बताते हो, उसको थोड़ी पता होता है। तो रचयिता जब तक खुद न बताए रचना को, अपना और अपने रचयिता का ज्ञान सही कभी नहीं हो सकता, और इसलिए आज दिन तक जो भी परिचय है वहां पे टिकता ही नहीं मन, फिर कह बैठता है मन, बता न खुदा तू है कौन। तो इसलिए वो आता है और उसने क्या आगे परिचय दिया वो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो क्या होता है परिचय में, जैसे घर में भी एक बच्चा जन्म ले, हम खुशखबरी देंगे अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को कि भाई घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो सामने वाला तुरंत पूछेगा, अच्छा बच्चा किस पे गया है, कैसा रंग है उसका, बच्चा है कि बच्ची है, या फटाफट प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे ही जब पिता परमात्मा धरती पर अवतरित हो गया है तो क्या है उसका रूप, क्या है उसका रंग, क्या है उसका लिंग, जानना चाहेंगे ना हम। तो क्या है, तो परमात्मा ने बहुत सरल करके बताया कि परमात्मा भी एक आत्मा है, और इसलिए कहा परमात्मा ने कि बच्चे जैसे तुम एक आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हो, चैतन्य शक्ति हो, ऐसे ही मैं तुम्हारा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, चैतन्य शक्ति हूं। आप देखो यहां से अगर एक बिल्ली का बच्चा गुजर जाए, उसको देखकर उसके माँ बाप की कल्पना किस रूप में करेंगे, बिल्ली के रूप में या कुत्ते के रूप में, बिल्ली के ही रूप में करोगे ना। एक हाथी का बच्चा गुजर जाए, उसके माँ बाप की कल्पना हाथी के रूप में या ऊंट के रूप में, हाथी के रूप में। मनुष्य का बच्चा गुजर जाए, उसके माँ बाप की कल्पना मनुष्य के रूप में या गधे के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो भगवान को जब हम कहते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, और हमने कल अपने परिचय में देखा कि हम आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट है, चैतन्य शक्ति है, अचर अमर अविनाशी है, तो वो पिता भी कैसा होगा, पॉइंट ऑफ लाइट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मिल गया आपको परमात्मा का रूप, कर लीजिए दिल खोल कर उसका दर्शन कि कैसे है मेरे पिता, पॉइंट ऑफ लाइट। पर चूंकि वो परमात्मा है तो आत्मा जैसी समानता तो होगी लेकिन कुछ अलग भी होगा, क्योंकि परम है ना। तो परम है तो वो आत्मा जो है परमात्मा, उसकी ज्योति सदा जागती है, वो कभी धुंधलाती नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सदा जागती ज्योत। जबकि आत्माओं की ज्योति धुंधला जाती है, जैसे चंद्रमा, आज पूनम है कल चांद, तो बैटरी जब फुल चार्ज है आत्मा फुल चमकती है पूनम के चांद की तरह, लेकिन बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो अमावस के चांद की तरह सिर्फ एक लकीर रह जाती है सिल्वर की। और इसीलिए जैसे अब चांद कभी भी पूरा डार्क नहीं होता, एक सिल्वर लाइनिंग रहती है, ऐसे आत्मा रूपी बैटरी कभी भी 100% डिस्चार्ज नहीं होती है, थोड़ा सा चार्ज रहता है, और उसी का परिणाम है कि हम धक्का मार गाड़ी चला रहे हैं, धक्का मार जीवन चल रहा है सबका, क्योंकि वो बैटरी पूरी कभी फ्लैट होती नहीं है। तो परमात्मा सदा जागती ज्योत, और उसके प्रकाश की इंटेंसिटी आत्मा के प्रकाश की इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा, क्योंकि परमात्मा है ना वो। तो ये है उसका रूप, और रंग क्योंकि वो धुंधलाता ही नहीं है तो सदा उजली उजली रोशनी है उसकी, और हम धुंधला जाते हैं, समझ में आ गया, तो उजला रंग है उसका, निखरा निखरा रंग है उसका। तो रंग हो गया, रूप हो गया, अब लिंग। परमात्मा तो मां के गर्भ में जाता ही नहीं है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो सवाल उठता नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें तो यही भाषा समझती है, हमें तो इसी भाषा में भगवान का परिचय चाहिए। भाई दुनिया में भी जब बच्चा हुआ बच्ची हुआ तो क्या लिंग माना चिन्ह, कि उस चिन्ह को देखकर हम बताते कि बच्चा हुआ या बच्ची हुई है। तो क्या है परमात्मा का लिंग, तो हम सभी जानते हैं, भारत में शिवालय पाए जाते हैं जिसमें क्या रखे होते हैं, शिव ज्योतिर्लिंग। तो क्या है परमात्मा का लिंग, न वो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, वो तो शिवलिंग है, वो तो ज्योतिर्लिंग है। पूरा नाम क्या है, शिव ज्योतिर्लिंगम, पर शॉर्ट में कोई कहते हैं शिवलिंग, कोई कहते हैं ज्योतिर्लिंग। जैसे किसी का नाम हंसराज हो तो कोई उसे हंस कहकर पुकारेंगे, कोई उसको राज कहकर पुकारेंगे और कोई उसे पूरा नाम हंसराज कहकर पुकारेंगे। ठीक ऐसे ही कोई शिवलिंग कहते हैं और कोई शिव ज्योतिर्लिंग कहते हैं और कोई शिव ज्योतिर्लिंगम। तो जो जीव शिव ज्योतिर्लिंगम रखा होता है शिवालयों में और उसको हम शिव ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, मतलब इस नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो लिंग रखा है, ये जो आकृति रखी है, ये जो प्रतिमा रखी है, ये किसकी है, ये उस हस्ती की है जिसका नाम शिव है, जिसका स्वरूप ज्योति है। तो पता चल गया लिंग क्या है, नाम क्या, नाम भी आ गया, और इसीलिए यहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, प्यार से उसको, क्योंकि पिता का संबंध है ना, तो उसे हम कहते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा जब हम कहते हैं, कोई देहधारी बाबा की बात नहीं है, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की ओर इशारा है। हमारे इंस्टीट्यूशन में दो बाबाओं की बात चलती है, एक शिव बाबा जो निराकार और एक मूछ वाला बाबा जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बाबा किसको बोल रहे हैं हम, शिव बाबा निराकार ज्योति को कह रहे हैं। और फिर ये ब्रह्मा बाबा क्या है, तो जैसे कहा परमात्मा अवतरित होते हैं, अर्थात यहाँ वो रहते नहीं हैं, रहते तो फिर अवतरण का सवाल क्यों उठता, वो रहते नहीं हैं, लेकिन अवतरित होते हैं, अर्थात मनुष्य आत्माओं की तरह माँ के गर्भ में नहीं जाते हैं, ऊपर से आते हैं, अवतरण होता है नीचे। और कैसे होता है, तो काया पर, कहा पर काया प्रवेश करते हैं, क्योंकि गर्भ से तो जन्म उसने लेना ही नहीं है, तो फिर लेकिन हमारे को उसे ज्ञान देना है, गुण देना है, शक्तियां देना है, हमारे जैसा बनना भी पड़ेगा उसको, और गर्भ में भी नहीं जा सकता हूं, तो पर काया प्रवेश करते हैं, अर्थात ऑलरेडी कोई आत्मा अपने शरीर में बैठी हुई है और उसके शरीर में उसके भ्रुकुटी में जाकर बैठ जाएंगे। मुख मिल गया बोलने के लिए, कान मिल गया बच्चों की बात सुनने के लिए, हाथ मिल गया आशीर्वाद करने के लिए, और वो अपना कार्य संपन्न करता है, ज्ञान गुण शक्तियां देता है और फिर चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं शिव जी की सवारी बैल पर, बैल पर कहते हैं शिवाजी, तो बैल कोई और नहीं, एक पुरुष के तन में परमात्मा का, शिव का अवतरण होता है। और चूंकि कहा जाता है कि परमात्मा को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प हुआ तो ब्रह्मा के द्वारा रचना की, विष्णु के द्वारा पालना की और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश किया। और इसीलिए परमात्मा जब धरती पर आते हैं, जिस पुरुष को अपना रथ बनाते हैं, सवार होते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा है। और उसकी स्टोरी अलग एक आपका टॉपिक रहेगा, सेशन रहेगा, अभी हमको फोकस करना है परमात्मा पर। तो क्लियर हुआ कि परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, लिंग क्या है, अब आती है बात धाम, एड्रेस क्या है। तो एड्रेस तो पहले ही पता चल गई कि वो अवतरित होते हैं, यहाँ रहते नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, कभी बोला नीचे वाला जाने, ऊपर रहता है। जो परमानेंट एड्रेस है उसकी ऊपर, और ऊपर हमारी भी एड्रेस है। बाप और बच्चे एक साथ रहते हैं ना शुरू में, तो परमात्मा ने कहा बच्चे जो तुम्हारा निवास ऊपर है वही मेरा भी निवास है, एड्रेस है। और जैसे तुम्हारी प्रेजेंट एड्रेस इस रंगमंच पर देह धारण की है और प्रकुटी है, ऐसे ही मैं भी अधर्म के समय जब आया हूं, और इसीलिए परमात्मा को एक नाम देते हैं स्वयंभू, कि वो स्वयं की ताकत से भू पर आकर अपना कर्तव्य करना आरंभ करता है। जबकि आत्माएं इस भू पर आने के लिए पहले माँ का गर्भ चाहिए, उस गर्भ में शिशु आकृति तैयार हो और उसमें आत्मा जाके प्रवेश करे, उसकी और ग्रोथ हो, फिर वो आगे आए शरीर से बाहर और एक एक चीज मात पिता से पहले सीखे और फिर कुछ कर सके। लेकिन परम पिता को इन सब की जरूरत नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं की ताकत से। बस चूंकि हमारे जैसा बनना पड़ता है हमारे को सिखाने के लिए, तो एक पुरुष तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके बैठ जाता है भ्रुकुटी के बाद, क्योंकि उसकी भी आत्मा बैठी है उस शरीर में, उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और मुखारविंद से ज्ञान समझाता है, नैनों से वो प्यार और गुणों और शक्तियों की वर्षा करता है। तो वो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर वाली एड्रेस परमानेंट और परमात्मा की ये ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी वो उसकी टेम्पररी। और हम आत्माएं तो भ्रुकुटी में कंटिन्यूस बैठी है, वो कंटिन्यूस नहीं बैठते, इसलिए तो सवारी कहा गया। सवारी में कंटिन्यूस बैठते हैं क्या आप? कार में कंटिन्यूस बैठते हैं क्या? आए बैठे, जाना था जहां वहां पहुंचे फिर उतर गए। परमात्मा आते हैं ब्रह्मा के तन में सवार होते हैं, ज्ञान गुण शक्तियां लुटाते हैं, फिर चले अपने घर परम धाम में जाके निवास करते हैं। तो क्लियर हो गया, एड्रेस भी हो गया। तो और क्या बातें बताई थी? पांच बातें, नाम चाहिए, रूप चाहिए, एड्रेस चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन से तो शुरुआत की थी हमने, क्वालिफिकेशन से तो शुरुआत की थी, और ये रूप रंग बताने से पहले प्रोफेशन बता दिया कि अधर्म मिटाने के लिए आता है। सब कुछ तो हो गया, परमात्मा का परिचय हुआ या नहीं हुआ? आगे पूरी पांचों बातें, परमात्मा के परिचय की पांचों बातें पूरी हो गई। लेकिन अब बाकी क्या रह गया? कहां से शुरुआत की थी? सर्वोच्च से शुरुआत की थी, जिसका एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का देके हमने सहज किया था। तो जैसे कहा कि मेरे को फैसला हाई कोर्ट का मान्य नहीं था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मान्य नहीं था, मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया। मैं मान्य नहीं भी करना चाहूं तो भी मुझे मान्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आगे अभी और कोई कोर्ट नहीं। तो सर्वोच्च का और एक अर्थ होता है, जो सर्वोच्च होगा वो सर्वमान्य भी होता है, मानना ही पड़ता है ना सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए जो सर्वोच्च होगा वो सर्वमान्य होगा, अर्थात उसे सर्व याद करते हैं। वो कोर्ट की बात थी, यहाँ पे परमात्मा की बात चल रही है कि जो परमात्मा सर्वोच्च है उसे सभी याद करते हैं, वो सर्व को मान्य है। और सर्व माना, आज मानवता धर्मों में बट गई है, और इसलिए कहते हैं जो सर्वोच्च है वो सर्व धर्म को भी मान्य है। तो क्या सर्वधर्म को मान्य है? कि जो परमात्मा ने अपने एड्रेस, अपने परिचय की पांच बातें बताई, ये सर्वधर्म को स्वीकार होना चाहिए। तो चलिए धर्मों की यात्रा शुरू करते हैं। इस पिक्चर में देखते हैं कि क्या सभी धर्म परमात्मा के इस नाम रूप को एक्सेप्ट करते हैं जो परमात्मा ने आके बताए। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा का परिचय दिया और परिचय देने के लिए उंगली का इस्तेमाल किया। और उंगली कितनी? एक। एक उंगली और कैसे दिखाई? ऊपर की तरफ। ऐसे दिखाई थी? अपनी तरफ दिखाई थी? नहीं, ऐसे दिखाई थी। और ऐसे दिखाकर क्या कहा? गॉड इज लाइट। तो उन्होंने ये बताया, परमात्मा एक होता है, ऊपर में रहता है और उसका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। और जब उसको, और उसने इतना ही नहीं कहा कि गॉड इज लाइट, उसने कहा गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। तो उसके क्वालिफिकेशन भी बताना शुरू कर दिए और उसकी प्रोफेशन भी बता दिया। कैसे? जब सूली पर चढ़ाया गया तो कहा, हे परमात्मा इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रोफेशन बता दिया कि परमात्मा क्षमा का सागर है, करुणा का सागर है। तो सारा परिचय तो उसने वही दिया जो परमात्मा ने बताया है। सिक्खी सब के अंदर गुरु नानक जी ने भी उंगली का इस्तेमाल किया। उसकी भी उंगली एक और उसकी भी उंगली ऊपर, कभी ऐसे नहीं किया। और क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने अपने आप के लिए क्या कहा? आई एम द सन ऑफ गॉड। ये बात अलग है कि उसको मानने वालों ने कहा, आप जिस परमात्मा की ओर इशारा कर रहे, हमारी बुद्धि में तो बैठा नहीं है, इसलिए आप ही हमारे लिए परमात्मा है। पर जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा कि गॉड इज लाइट। ठीक ऐसे ही श्री गुरु नानक ने भी उंगली ऊपर की, एक, वो एक है, वो ऊपर रहता है, वो एकोंकार है। और जब एकोंकार, अगर आपने फोटो देखी होगी तो एकोंकार में से राउंड लगाते हैं, एकोंकार लिखा होता है और चारों तरफ किरणें फैल रही है। कि वो परमात्मा जो एक है, जो ऊपर का रहने वाला है, वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, वो निराकार है। सेम परिचय दिया, अपने लिए क्या कहा? नानक दास, नानक नीच, ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। बता रहा है कि मैं अलग हूं, वो अलग है। पर बाद में मानने वालों ने कहा, हमें तो वो दिखता नहीं, हमारे लिए आप ही परमात्मा है। ऐसे ही महावीर जैन और महात्मा बुद्ध, जिनको बाल्यकाल में ही वैराग्य आया और घर छोड़कर तपस्या में चले गए, लंबे वर्षों तक ध्यानस्थ रहे और उस ध्यानस्थ अवस्था में अल्टीमेटली उन्हें साक्षात्कार अगर हुआ है, एनलाइटनमेंट हुई है, किस बात की? प्रकाश दिखाई दिया है कि आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। और इस आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है, इसे परम प्रकाश की हाइट तक लेकर जाना है। तो इन दोनों ने खुले रूप में परमात्मा का कोई वर्णन नहीं किया, लेकिन आत्मा ज्योति है इसका वर्णन जरूर किया। और इस ज्योति को परम ज्योति की हाइट तक लेके जाना है, ये जरूर कहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमात्मा के ज्योति स्वरूप को, और अगर आप उनके डिटेल में जाएंगे तो सारी पांच बातें उन्होंने भी स्वीकार की है। जापान के अंदर बौद्धिज्म का एक सेक्ट है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने सामने एक स्टैंड रखते हैं और एक स्टैंड पर एक पत्थर या कुछ आकृति रखते हैं जो अंडाकार शेप में होती है और उनके सामने रखकर उसको उस पर ध्यान टिकाते हैं और उनसे पूछो ये क्या है, तो कहते अपनी भाषा में चिन कौन से की, जिसका हिंदी अर्थ है शांति का दाता, और शेप कैसा है अंडाकार। इनडायरेक्टली उस परमात्मा का ही शेप दिया हुआ है और शांति का दाता कौन है, परमात्मा। तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली बुद्धिज्म हो जैनिज्म हो, परमात्मा का यही स्वरूप स्वीकार है। फिर आते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर कि मुस्लिम धर्म भी जब परमात्मा को याद करता है ना, नमाज पढ़ते हैं ना, आंखें किधर करते हैं, ऊपर करते हैं, और हज करने जाते हैं काबा के पत्थर के प्रति रिस्पेक्ट अदा करते हैं। जब तक वो नहीं किया समझते हैं जीवन यथार्थ रूप में सार्थक नहीं हुआ, और वो काबा का पत्थर की शेप में है तो कहा वो भी अंडाकार है, और परमात्मा के लिए क्या कहा, क्या कहा नूरे इलाही, अल्लाह एक नूर है। अब नूर माना क्या होता है, प्रकाश ज्योति यही होता है। तो मुस्लिम धर्म भी परमात्मा के इसी स्वरूप को स्वीकार करता है। फिर आते हैं पारसियों के टेंपल को, तो कहते ही फायर टेंपल है, और जहां अखंड रीति से वो फायर वो अग्नि प्रज्वलित रहती है कि वो इशारा कर रहे हैं कि परमात्मा एक अखंड ज्योति है। फिर आते हैं हिंदुइज्म में कि जिसमें हमने पहले ही बताया हिंदुइज्म के अंदर शिवालय पाए जाते हैं, दो प्रकार के मंदिर, एक जिसे शिवालय कहते हैं, दूसरा जिसे देवालय कहते हैं, और शिवालय में शिव ज्योतिर्लिंगम स्थापित जो पहले वर्णन करके आ चुके हम, और देवालयों में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित। अब ये देवी देवताएं भी पूजा करते हुए दिखाए गए हैं किसकी, शिवलिंग की। श्री राम को जब श्रीलंका जाना था माता सीता को वापस लाने के लिए, तो क्या किया, पहले रावण से लड़ाई करने से पहले शिवलिंगम स्थापित करके पूजा करके शक्ति का अर्जन किया, क्योंकि रावण भी कोई कम शक्तिशाली थोड़ी था, और कृष्ण को भी गोपेश्वरम में दिखाया है कि पांडवों को भी खुद के एग्जाम्पल से सिखा रहे कि शिवलिंगम की पूजा करके शक्तियां अर्जित करनी है। शंकर भी हमेशा ध्यानस्थ दिखाए गए हैं और सामने कौन बैठे हैं उसके, वो शिवलिंग है। तो यहां से ये पता चलता है शिव और शंकर में भी अंतर है। इसीलिए तो देखो हम शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि बोला हमने, हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, कभी सत्यम शंकरम सुंदरम कहा, हम शिवालय कहते कभी शंकरालय बोलते हैं नहीं, और शंकर को तो देह दिखाया, भले निर्वस्त्र दिखाया है पर देह तो दिखाई है, और परमात्मा को तो देह ही नहीं है, तो दोनों में अंतर है। और फिर देवी देवताओं को देखिए आप, देवताओं को तो बता दिया, देवियों को देखो क्या कहते हैं, देवियों को असुर संहारिणी शिव शक्तियां, अर्थात ये वो देवियां हैं जो शिव से कनेक्शन करके शक्तियां अर्जित करती हैं, और अर्जित शक्ति के आधार पर असुर अर्थात निगेटिविटी का खात्मा करती है। और जब आरती होती है ना देवियों की जब नवरात्रि में उसमें एक लाइन आती है, तुम हो शिव पटरानी, कहते हैं अर्थात उन देवियों से भी ऊंचा कौन है, शिव है। और देवियों के आगे भी क्या होती है, ज्योता वाली माँ कहते हैं, ज्योति का ही सब गुणगान हो रहा है। तो कुल मिलाकर विश्व के मुख्य मुख्य जो धर्म है सभी परमात्मा के उसी परिचय को स्वीकार करते हैं जो स्वयं परमात्मा ने आकर के दिया है। और एक बात, जो सर्वोच्च होता है वो सर्वधर्म मान्य होता है और वो अपने आप में अकेला होता है, एक होता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक होती है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं, हिंदू जिसको परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, प्रभु कहता है, क्रिश्चियन जिसको गॉड कहता है, मुस्लिम जिसको अल्लाह कहता है, वो गॉड, वो अल्लाह, वो परमात्मा एक है या अनेक है? क्या उत्तर आएगा? एक। तो एक तरफ कहते हैं वो परमात्मा एक है और देवी देवताएं कितने हैं, कितने हैं देवी देवताएं? 33 करोड़ अनेक। अब गणित थोड़ा याद करो, 1 = 33 करोड़, राइट या रॉन्ग? 1 = 33 करोड़ होता है क्या? होता है? नहीं होता है। और पहले ही कहा देवी देवताओं को देह है। तो ये हमारी गलती थी कि हमने कहा जितने भी देवी देवता है वो क्या है, भगवान। वो भगवान नहीं है, वो दिव्य आत्माएं हैं जिनकी बैटरी चार्ज है। तो दिव्य आत्माएं अनेक, परमात्मा एक। धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं अनेक, परमात्मा एक। महान कार्य करने वाली आत्माएं अनेक, परमात्मा एक। धर्म के कार्य करने वाली धर्मात्माएं अनेक, परमात्मा एक। पुण्य कार्य करने वाली पुण्यात्माएं अनेक, परमात्मा एक। पाप कार्य करने वाली पापात्माएं अनेक, परमात्मा एक। तो आज दिन तक, क्योंकि पूरा परिचय तो जब तक परमात्मा नहीं दे हमें मिल नहीं सकता, इसलिए किसी ने यहाँ पर देवी देवता को बिठाकर कहा मेरे परमात्मा, किसी ने धर्म स्थापक को बिठाकर कहा मेरे परमात्मा, किसी ने महान आत्मा को बिठाकर, संत महात्माओं को बिठाकर कहा मेरे परमात्मा। और इसीलिए फिर मन में प्रश्न उठा, दिल में बिठाया भी परमात्मा, लेकिन कहा ओ परमात्मा, ओ खुदा, तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा धाम क्या है। तो नाम काम धाम परमात्मा का ऊंचे से ऊंचा है, और ऊंचे से ऊंचा है का मतलब ये देवात्माएं भी ऊंची है, धर्म स्थापक भी ऊंचे हैं, धर्मात्माएं भी ऊंचे हैं, पुण्यात्माएं भी ऊंचे हैं, महात्माएं भी ऊंचे, पर उनसे भी ऊंचा परमात्मा। और इसलिए कहा ऊंचे से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा काम। ये है परमात्मा का परिचय। तो चलिए, ऐसा परमात्मा जिसका स्वरूप ज्योति है, जिसके स्वरूप दर्शन के लिए हम कितने लंबे समय से भजन गाते रहे, ये अखियां तेरे दर्शन की प्यासी है, पर ये वाली अखियां नहीं, क्योंकि आज दिन तक तो हम भगवान को भी देह का रूप दे रहे थे, तो डेफिनेटली ये वाली आंखें। लेकिन एक और भजन गाते हैं और वो है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और गाने वाला कौन होता है? जिसको दोनों आंखें होती है। दोनों आंखें वाले गाते हैं ना, तो ये आंखें तो है, फिर क्यों बोला नयनहीन को राह दिखाओ? तो कौन से नयन की बात थी? वो तीसरे नेत्र की बात थी, ज्ञान के चक्षु की बात है, अनुभव के नेत्र की बात है। तो अभी हम इन नयनों से नहीं, उस तीसरे नेत्र से, अनुभव के नेत्र। तीसरा नेत्र माना ज्ञान के आधार से पता चल गया ना कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं आत्मा चमकती हूं, परमात्मा भी ऐसे चमकता है। लेकिन तारों में भी हर एक की रोशनी अलग होती नहीं होती है, परमात्मा परम ज्योति, बहुत ब्यूटीफुल मनोहारी उसकी छवि है। तो चलिए कुछ पल उस मनोहारी छवि का सुंदर दर्शन कर ले। सीधे बैठ जाए, इस देह और इस देह की हर बात से अपने आप को डिटैच कर ले और अपना ध्यान प्रकृति के मध्य में जहां तिलक करते हैं वहां केंद्रित करें। भीतर में देखें एक आत्म ज्योति जगमगा रही है, जिसका प्रकाश किरणों के रूप में चहुं और फैल रहा है। ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकाशित कितनी सुंदर है। ज्योति के साथ साथ शीतलता का भी अनुभव है। आत्मा सतोगुणी है, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशन चहुं ओर फैल रहे हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम के वाइब्रेशंस मैं खुद भी अनुभव करती हूं और चारों ओर भी फैलते हुए देखती हूं। अब मैं आत्मा गुणों से अपने प्रकाशमान स्वरूप में आकर, या यूं कहें कि मैं सज धज कर पूर्ण प्रकाशित स्वरूप में गुणों की खुशबू फैलाते हुए इस देह की प्रकृति से निकलकर उड़ान भरती हूं उस परम धाम की ओर। देखिए आत्मा झिलमिल करती हुई ऊपर की ओर जा रही है, नीले आसमान को पार कर गई है और फरिश्तों की दुनिया जो श्वेत प्रकाश की, उसको भी पार करके आत्मा पहुंच गई है एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, जिसे परमधाम कहते हैं, जहाँ की मैं ओरिजिनल रहने वाली हूँ। इस अपने असली ओरिजिनल धाम में मैं आत्मा अपने प्रकाशित स्वरूप में जगमगा रही हूँ। इस धाम में चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। दूर दूर तक सिर्फ शांति ही शांति है। मैं स्वीट साइलेंस का अनुभव करती हूँ और इस धाम में ठीक मेरे सामने वो परम ज्योति भी है, वो परमात्मा शिव बाबा भी है, जिसके सुंदर छवि का दर्शन पाने के लिए मैं वर्षों वर्षों से तो क्या जन्मों जन्मों से और जन्मों जन्मों से तो क्या युगों युगों से प्यासी रही। आज मेरी वो प्यास पूर्ण हो गई। मैं अपने पिता परमात्मा के सुंदर छवि का, मनोहारी छवि का सुंदर दर्शन कर रही हूँ। मैं उसके सानिध्य में हूँ, मैं उसके लोक में हूँ, उसके करीब उसकी छवि का दर्शन करते हुए उससे निकलने वाली उन प्रकाश किरणों में जैसे कि स्नान कर रही हूँ। उनके गुणों और शक्तियों के किरणें और वाइब्रेशन उनसे निकल निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मैं स्वयं को भरपूर निश्चिंत महसूस कर रही हूँ। देखते रहे अपने पिता की इस सुंदर छवि को, इतना अपने अंतर्मन में उसको उतार ले कि जब मैं इस परमधाम से भी नीचे चली जाऊं, अपने व्यवहार जगत में भी रहूं, तो भी परमात्मा कहते ही ये सुंदर छवि मुझे बार बार दिखाई देती रहे। इतना इसको भरपूर देखकर अपने अंतर मन में इस छवि को अंकित कर ले। वो करुणा सागर, अपनी करुणा उसने बरसा दी है, अपने सानिध्य में, अपने सामीप्य में, अपने लोक में अर्थात सालोक्य में रहने का मुझे सुंदर मौका दिया है। अब मैं आत्मा और मेरे पिता परमात्मा सदा सदा के लिए एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और उस कनेक्शन को समझने के लिए मैं समय दूंगी। आज तो सिर्फ मैंने पिता का परिचय प्राप्त किया है और उसके मैं दर्शन कर रही हूँ, लेकिन सदा सदा ये दर्शन होते रहे, सदा सदा ये ज्ञान और गुण और शक्तियाँ मुझ पर बरसते रहे, सदा उनकी छत्र छाया में रहूं। अब मैं ऐसी विधि सीखकर उनसे कनेक्ट रहूंगी। इसी प्रॉमिस के साथ कि परमात्मा तुम्हें पाने के लिए हमने कहा था, एक बार प्रभु सिर्फ मिल जाओ फिर तो हम आपके हो जाएंगे। आज प्रभु पिता आप मिल गए हैं और जो भक्ति में गाते रहे हम आपके हो जाएंगे, आप पर न्योछावर हो जाएंगे। सचमुच आज उसी अपनी प्रतिज्ञा को मैं आपके सामने दोहराती हूँ, आप मिल गए हो, अब तुम ही मेरा संसार हो, सब कुछ तुम हो, ये जीवन तुम पर न्योछावर है, ये जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, तुम मेरी नैया के खेवैया हो। थैंक यू बाबा अपना परिचय देकर अपने से मिलाने के लिए, थैंक यू। और इस प्रकार से शुक्रिया के भाव से भरकर परमात्मा के गुणों और शक्तियों से भरकर उसकी सुंदर छवि को अंतर मन में अंकित करके मैं आत्मा वापस चलती हूँ अपनी भौतिक दुनिया में। देखें आत्मा नीचे उतर रही है और उतरते उतरते प्रवेश कर गई है नीले आसमान की दुनिया में, और नीचे उतरते उतरते इस देह में, इस प्रकृति में विराजमान। और अब मैं अपने कर्म क्षेत्र के प्रति, अपने देह के प्रति जागरूक, लेकिन इस कर्म क्षेत्र में अब मैं जब जाऊंगी उसी पिता की सुंदर छवि को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं गुणों और शक्तियों को जिसको भरकर आई हूँ, उस गुणों और शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाते हुए कर्म क्षेत्र में अपना हर कर्म, अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगी। ओम शांति शांति।